आज मोहिनी एकादशी में सभी को स्वागत है एकादशी व्रत के लिए। तो आज आपके परंपरा के अनुसार श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करेंगे। मैं तो सोचा आज दर्शन में इतनी लेट हो रहा है, हो ना हो भगवान सबको मोहित करेंगे मोहिनी रूप में, लेकिन किए नहीं। हम लोग क्वालिफाइड नहीं, आप लोग सब माया कुछित लेना वही थोड़ी होंगे। एक दो साल पहले शायद मैं नोएडा में था, आज के महीने एकादशी के दिन मंगल आरती में तो राधा गोविंद जैसे दिखाई पड़े, देखा दर्शन आरती में सब हम चकित हो गए, गोविंद जी थे ही नहीं, अल्टर में दो राधानी खड़े थे। गोविंद जी के रूप को ऐसे चंदन में सवा करके साड़ी पहना करके बिल्कुल राधा रानी भी हार जाएंगे, ऐसे मोहिनी मूर्ति धारण करके खड़े थे गोविंद जी। मैं सोचा शायद यहाँ राधिका रमन भी साथ होंगे कि क्या, लेकिन हुए नहीं। हरे कृष्ण शील प्रभुपाद लीलामृत। भारत इस कण को एकताबद्ध करना, ज्यों ज्यों उत्सव निकट आ रहा था कुछ सन्यासी पहुंचने लगे थे इस आशा में कि भक्ति की बाढ़ आने के पहले वे श्रील प्रभुपाद से अधिक आत्मीय संसर्ग बना सके। सन्यासियों के बीच विचार विमर्श का एक सबसे बड़ा मुद्दा इस्कन में गृहस्थों की भूमिका से संबंधित विवाद तथा स्त्रियों और बच्चों का सन्यासियों और ब्रह्मचारियों पर पड़ने वाला प्रभाव था। कुछ सन्यासियों का सुझाव था कि इस्कन की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे गृहस्थों से सन्यासियों और प्रचारकों को अलग रखा जा सके। वे अपने विचार श्रील प्रभुपाद के सम्मुख रखने लगे, तब प्रभुपाद ने उनका मार्गदर्शन किया। एक दिन सवेरे के भ्रमण में जयपता का स्वामी ने पूछा कि किसी व्यक्ति को सन्यास ग्रहण करने के लिए क्या मानदंड प्राप्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सन्यासी बनने के लिए उसके पहले के तीन आश्रम है, पहले ब्रह्मचारी बने, फिर गृहस्थ बने, उसके बाद वानप्रस्थ हो, एक के बाद दूसरा। किंतु यदि कोई योग्य है तो वह सीधे सन्यास ले सकता है और वह योग्यता भी बहुत सरल है। यदि आप पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना युक्त हो जाएं, तो आप में योग्यता तत्काल आ जाएगी। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ज्यों ही आप कृष्ण भावनामृत में आपने आपको पूरी तरह तल्लीन कर लेते हैं, आप सन्यासी से अधिक हो जाते हैं। हरिशौरी ने जो एक गृहस्थ था पूछा कि क्या कृत्रिम रूप से सन्यास आश्रम स्वीकार करना वस्तुतः एक अन्य प्रकार से इंद्रिय भोग में लिप्त होना नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जो ही हम किसी चीज का निर्माण करते हैं वह कार्य इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। जब हम सोचते हैं मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूं बस, तो इंद्रिय तृप्ति है। हम चाहे किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों अथवा किसी महल में, मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति है। पिछले दिनों में हीरा चोर या खीरा चोर की बात कर रहा था, एक सोचता है कि मैं एक ककड़ी चुराऊंगा, दूसरा सोचता है कि मैं चोरी करूंगा तो एक हीरे की चोरी करूंगा, किंतु चोरी की प्रवृत्ति दोनों में है। कोई सोच सकता है कि मैं तो केवल एक ककड़ी चुरा रहा हूं, यह उतना आपत्तिजनक नहीं है, किंतु कानून की निगाह में दोनों अपराधी है। इसलिए यदि हम कल्पना करें, हाँ मुझ में चोरी की प्रवृत्ति है किंतु मैं हीरा नहीं चुराऊंगा खीरा चुराऊंगा, तो यह केवल मानसिक छल है, चोर तो मैं हूं ही। जगत का स्वामी बोले, तो क्या कृष्ण भावनामृत में गृहस्थ जीवन में खीरा चोर होने की अनुमति है। प्रभुपाद, हाँ खीरा चोर वेश्याओं के पीछे भागने वाला हीरा चोर है, और गृहस्थ खीरा चोर है, बस समझ में आया ना, खीरा चोर हीरा चोर में क्या अंतर कहते हैं। जो वैश्याओं के अड्डा स्थल में जाते हुए हीरा चोर और जो गृहस्थ है वो है खीरा चोर। हरिशोर ने फिर पूछा कि क्या कृत्रिम संन्यास एक प्रकार का इंद्रिय भोग है। शिष्यों के मत भिन्न भिन्न थे और वे चाहते थे कि प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट कर दें ताकि कोई एक दल प्रभुपाद का कोई उदाहरण देते हुए यह दावा ना करे कि वही विश्वजनित है। प्रभुपाद ने कहा, संन्यास या त्याग कृत्रिम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हमें इंद्रिय भोग का त्याग करना है, इसलिए एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे किसी स्वास्थ्य क्लब में होता है, वहां कृत्रिम तैराक भी होते हैं या नहीं होती। कृत्रिम तैराक वास्तविक तैराक नहीं है, किंतु वह अभ्यास के लिए होती है। दयानंद, किंतु कभी कभी लोग त्याग करके बड़े अहंकारी हो जाते हैं, यह क्या है? प्रभुपाद ने अपना उत्तर जारी रखते हुए कहते गए कि त्याग का वस्तुतः अभ्यास करना पड़ता है। उन्होंने कहा, प्रत्येक को मंगल आरती में उपस्थित होना चाहिए, यह अनिवार्य है, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। यदि आप बीमार हैं तो फिर खाना भी नहीं चाहिए, मंगल आरती के समय सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई कहता है कि वह बीमार है पर प्रसाद ग्रहण करने के समय तो पेटू की तरह खाता है। यदि भक्तों की यह इच्छा थी कि प्रभुपाद गृहस्थ और संन्यास समय भेद निरपेक्ष रूप से स्पष्ट कर दे तो वह नहीं हुआ, प्रत्युत उन्होंने प्रत्येक भक्त के लिए अपेक्षित गुण और अभ्यास पर बल दिया। तो प्रभुपाद जी के आने से पहले जितने सब भक्त थे, सन्यासी लोग और बड़े बड़े सीनियर गृहस्थ लोग, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ वानप्रस्थ, सब मिलकर के ये मुद्दा पर खूब विचार विमर्श कर रहे थे। होना चाहिए भाई, अभी मां छोड़े हैं तो सन्यासी हमको दी सीनियर समझते हैं, और जो जो सीनियर समझते हैं और नहीं समझते उनको, तो इसलिए वो चाहते थे कि हमको स्पेशल ट्रीटमेंट हो, अलग होना चाहिए, गृहस्थों को अलग होना चाहिए, ब्रह्मचारी को अलग होना चाहिए, इस प्रकार से कुछ लाइन ड्रा करना चाहते थे। प्रभुपाद जी को पूछ करके उनके मुख से निकाल करके सिद्धांत स्थापन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रभुपाद करने नहीं चाहते। सबको बोलते हैं कि सभी का अपना अपना रोल है, कई किससे कमी नहीं है, सबका दोष भी है सबका गुण भी है ना। प्रभुपाद जी की खासियत, कितने सारे मिलकर के प्रयास कर रहे थे कुछ तो कहें, लेकिन वो सबके ऊपर टाल देते, बोले सबका दोष भी है सबका गुण भी है। एक दिन सवेरे के भ्रमण में हृदयानंद गोस्वामी ने सन्यासियों में चलने वाले विवाद की चर्चा फिर की। हृदयानंद गोस्वामी ने कहा, हम सोचते हैं कि यह अच्छा होगा कि नगर के केंद्र उपदेशकों के लिए रखे जाए और स्त्रियों और बच्चों को कृषि फार्म पर रखना अधिक आसान होगा, वहां एक कुछ काम कर सकते हैं और अपने लिए भोजन पैदा कर सकते हैं। समझा ना क्या बोलते हैं? हृदयानंद गोस्वामी ने सलाह दिए मणिमाकम प्रभुपाद जी को, बोले गृहस्थों को सब फार्म हाउस में भेज देते हैं और जो सिटी सेंटर है वहां सब सन्यासी रहेंगे, है ना। बोले वो अपना काम करके खाना सब्जी वब्जी बनाए, हम लोग क्या प्रचार करेंगे। प्रभुपाद बोले, हाँ फार्म पर वे रह सकते हैं जो कुछ हाथ का काम कर सकते हैं। गुरु कृष्ण स्वामी बोले, यद्यपि वे ऐसा करेंगे नहीं, श्रील प्रभुपाद कहे तब उन्हें वहां न रहने दिया जाए, यदि वे नियमों का पालन नहीं करते तो लाभ ही क्या। एक अन्य सन्यासी ने कहा कि जब बहुत सारे गृहस्थ बड़े बड़े सामुदायिक केंद्रों में इकट्ठे हो जाते हैं तो आलस्य का वातावरण पैदा हो जाता है, किंतु जब बहुत से ब्रह्मचारी एक साथ उपदेश कार्य करते हैं तो उनमें अधिक गतिशीलता होती है। प्रभुपाद बोले, जो भी हो प्रत्येक को व्यस्त रहना चाहिए, बस बेकार जीवन ठीक नहीं, आलस्य को कभी बढ़ने मत दो। यदि हम अपने बीच कोई आलसी पुरुष रखते हैं तो यह चीज बर्बाद हो जाएगी। मत तो बोले, श्रील प्रभुपाद मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि हमारा संघ प्रेम लीला में मग्न रहने वाला संघ नहीं है, किंतु प्रेम आचार तो चल रहा है। आपने दो शिष्यों के अनुचित कर्तव्य की ओर निर्देश करते हुए प्रभुपाद ने कहा, हाँ मैंने वृंदावन में देखा है। अन्य शिकायतें भी सामने आई। एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि मंदिर को किसी स्त्रियों और उनके बच्चों के पालन पोषण का भार नहीं दिया जाना चाहिए जिनके पति न हो। एक अन्य शिकायत यह थी कि ब्रह्मचारीगण पुस्तक बेचकर वस्तुतः गृहस्थ को पाल रहे हैं। प्रभुपाद दार्शनिक और व्यवहारिक ढंग से उत्तर देते रहे कि जो भी कमियां सामने आए उन्हें ठीक करना चाहिए। इंद्रियाशक्ति, आलस्य और मंदिर के कार्यक्रम से अनुपस्थिति को सहन नहीं करना चाहिए, किंतु भक्ति में इस प्रकार की कमियों की निंदा का संबंध किसी विशेष दल से नहीं था। मायापुर में पहुंचने के कुछ समय बाद श्री प्रभुपाद ने आपने एक पत्र में भी इस तरह के मामले पर चर्चा की थी। एक श्रीमान चटर्जी ने कलकत्ता से लिखा था कि वे भगवान चैतन्य की भक्ति का उपदेश कर रहे थे और वे आपने लिखे कुछ लेख श्री प्रभुपाद को दिखाने को उत्सुक थे। श्रीमान चटर्जी ने लिखा था, मेरा प्रतिपाद्य यह है कि हम संन्यास ग्रहण करके अपने भगवान गौरांग को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो गृहस्थ है वह परमात्मा तक नाम संकीर्तन करके पहुंचते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने उत्तर से पत्र लेखक को प्रोत्साहित किया, आपका विषय ठीक है, भगवान चैतन्य के बहुत से भक्त गृहस्थ रहे हैं, जैसे अद्वितीय आचार्य या यहां तक कि भगवान नित्यानंद भी। भगवान चैतन्य ने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था। मुख्य बात कृष्ण को समझने की है। वास्तविक योग्यता यही है कि कोई कृष्ण को कितनी अच्छी तरह जानता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, गृह ठाको बने ठाको हा गौरांग बोले डाको। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई गृहस्थ आश्रम में रहता है या वानप्रस्थ में रहता है। जब तक वह भगवान चैतन्य के नाम का कीर्तन करता है वह वैष्णव है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि वा विप्र किन्यासी शूद्र के न नाय जय कृष्ण तत्ववित्ता सही गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो अथवा शूद्र हो, यह यदि कृष्णवित्ता है तो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। इसलिए आप आइए और हम आपके लेखों पर विचार विमर्श करेंगे। अपने कमरे में आराम से बैठे हुए श्रील प्रभुपाद हाल में प्राप्त कुछ पत्र अपने अस्थाई सचिव दयानंद से पढ़वाकर सुन रहे थे। एक पत्र एक मंदिर के अध्यक्ष का था जिसमें उन्होंने भक्तों को नियंत्रण में रखने की कठिनाइयों का वर्णन किया था। प्रभुपाद ने दयानंद से पत्र का सारांश करवाया। दयानंद ने कहा, वे कहते हैं कि भक्तों का व्यवहार ठीक नहीं और जब वे आलोचना करते हैं तो भक्त उनकी आलोचना की स्वीकार नहीं करते। तो प्रभुपाद ने कहा, केवल आलोचना करना ही हमारा तरीका नहीं है, हमें अपने आचरण से दिखाना होगा। दयानंद ने प्रभुपाद द्वारा उत्तर में लिखे जाने वाले पत्र में टाइप करने के लिए इस बिंदु को नोट कर लिया। तो प्रभुपाद जी ने बड़े अद्भुत काम किए। केवल उन्होंने विदेश जाकर के 70 साल की उम्र में हिप्पियों को हैप्पी नहीं बनाया, 80 वॉल्यूम के ग्रंथ को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया अपने समय के अनुसार। आपने साधन भजन भी किए, कई बार लगभग पूरे विश्व को 14 बार भ्रमण किए। उसके अलावा हजारों शिष्य उनको पत्र द्वारा, तभी जमाने फोन था नहीं, मोबाइल फोन होता तो उनका हाल खराब करते बब्बा जी के। तो पत्र द्वारा उनके साथ भाव विनिमय करते थे। तो प्रभुपाद जी ने सुबह अपने दर्शन आदि पूरा करके क्लास के बाद बैठते थे अपने हॉल में, और कई स्टॉक का लेटर आता था तो उनके सेक्रेटरी से लेटर पढ़वाते थे, खुद नहीं पढ़ सकते थे, उनको पढ़ते थे, बोले समरी में मुझे बताओ क्या क्या कोई पत्र में लिखा है तो फिर मैं उत्तर दूंगा। तो एक बार एक टेम्पल प्रेसिडेंट ने कंप्लेन किया था कि उनका टेम्पल के जितने भक्त हैं उनको कंट्रोल करना बहुत भारी मुश्किल है, कोई उनके बात नहीं सुनते, सेवा नहीं करते, और जब उनको आलोचना करता है उनकी बात मानते नहीं, तब मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी ने इस टेम्पल प्रेसिडेंट को उत्तर देते हैं, चिट्ठी में बोलते हैं कि देखो भक्तों लोग ने अगर सेवा ठीक से नहीं करते तो केवल उनको डांटने से उनका आलोचना करने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए तेरा नहीं सुनते, पर क्या करो ना उसके साथ आपको काम करके दिखाना होगा, आपने आचरण करके दिखाना होगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। आप अगर आचरण करके दिखाओगे नहीं केवल बात बोलने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा इतनी प्रैक्टिकल था, अगर किसी को कुछ सिखाना है तो करके सिखाओ, बोल के नहीं, है ना। नहीं तो दयानंद ने जारी रखा, श्रील प्रभुपाद अब वे अपने गृहस्थ जीवन के बारे में पूछ रहे हैं। प्रभुपाद ने बोले यह गुरु का काम नहीं है कि बताए कि जो न संबंध और पारिवारिक जीवन को कैसे समुन्नत किया जाए। पश्चिम के ये पुरुष और स्त्रियां सुखी नहीं है, वे विवाह करते हैं पर सुखी नहीं है, इसलिए मेरी संस्कृति है कि वे ब्रह्मचर्य और संन्यास का जीवन स्वीकार करें। प्रभुपाद के साथ कमरे में और अनेक शिष्य थे और उनमें से एक ब्रह्मचारी जगतगुरु बोल उठा, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है इसलिए उनके सामने इतनी समस्या है। प्रभुपाद ने कहा जो भी हो वे सुखी नहीं है, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य और संन्यास के जीवन की संस्तुति करता हूं। प्रभुपाद ने वृंदावन में पति पत्नी के जीवन में जो शैथिल्य देखा था उससे वे पहले से ही क्षुब्ध थे, और एक गृहस्थ का यह पत्र सुनकर जो अपने गृहस्थ जीवन के बारे में अनुचित रूप से पूछ रहा था उसका ध्यान फिर वृंदावन पर गया, और उन्होंने वृंदावन के जीवीसी सदस्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी को बुलवाया और अन्य हाल में मायापुर पहुंचे थे, जो अभी हाल में मायापुर पहुंचे थे। गोपाल कृष्ण के कमरे में प्रवेश करने के पूर्व ही प्रभुपाद ने कहना प्रारंभ कर दिया यह प्रेमाचार के लिए कोई निशुल्क होटल नहीं है, वृंदावन कोई मजाक स्थान नहीं है, कृष्ण के प्रति उन्हें गंभीर बनना है और मैं हर चीज की व्यवस्था करूंगा, धन की चिंता ना करें किंतु व्यवस्था ठीक रखें, धन का अभाव नहीं है, अभाव व्यवस्था का है, मंदिर में इतने अधिक बच्चे क्यों हैं, यह केवल पति विहीन स्त्रियों का स्थान नहीं है, बच्चों को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे सब जगह उत्पात करते न घूमें। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यदि माताएं घर जमींदारी का व्यवहार करती है और केवल अपने बच्चों की ही देखभाल करना चाहती है तो उन्हें वृंदावन से हटा देना चाहिए, दो स्त्रियां मिलकर एक नर्सरी चला सकती है और अनेक बच्चों को देखभाल कर सकती है और अन्य स्त्रियां अन्य काम कर सकती है। प्रभुपाद ने कहा छत पर जाकर केवल प्रेम लीला नहीं करनी है और फिर योजना बनाकर चंपत हो जाना ठीक नहीं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चूंकि समस्त भारत के लोग वृंदावन आते हैं इसलिए इस्कन केंद्र को भी सभी तरह से आदर्श होना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कि प्रभुपाद के शिष्य केवल हिप्पी है और कोई भी हमारे यहां नहीं आएगा। बच्चों की देखभाल का एक अच्छा उदाहरण मायापुर है जहां एक गुरुकुल की स्थापना हो चुकी है। प्रभुपाद ने कहा बच्चों का स्वागत है लेकिन उन्हें रत्न बनाइए, उन्हें बर्बाद करके वर्ण शंकर या हैप्पी मत बनाइए। गैर जमींदार गृहस्थ जीवन के विषय में प्रभुपाद के इन बोझिल शब्द से मायापुर में एकत्र सन्यासियों के आपसी तर्क वितर्क में और गर्माहट भी आ गई। उनमें से कुछ कुछों को लगा कि गृहस्थ को मंदिर में नहीं रहना चाहिए। उस शाम को जब अनेक सन्यासी प्रभुपाद के कमरे में एकत्र हुए तो उन्होंने इस कर्म में परिवारों और बच्चों की स्थिति के संबंध में उनसे विचार विनिमय किया। एक सन्यासी ने उल्लेख किया कि उसे कुछ मंदिर में उपदेश नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि वह विवाह के विरुद्ध था और ब्रह्मचारी जीवन पसंद करता था। दूसरे ने शिकायत की कि महंगी जायदादें अवस्था आवासों के रूप में प्रयुक्त करने के लिए खरीद जा रही थी, उपदेश कार्य ठप हो रहा था। उन्होंने कहा कि और ब्रह्मचारियों से कहा जा रहा था कि यदि ये कामातुर अनुभव करते हो तो निर्वाह कर लेना चाहिए। प्रभुपाद ने इस बात को अनुभव किया कि सन्यासियों के प्रतिवाद में भारी बल था और उन्हें विभिन्न आश्रमों के बीच वैर भाव का भी आभास हुआ। उन्होंने कहा कि इन बातों का निर्णय जीवीसी को करना चाहिए और उनके निर्णय के विरुद्ध किसी को आचरण नहीं करना चाहिए, किंतु सन्यासीगण जो कुछ कह रहे थे उसके प्रति भी उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की। उन्होंने सुझाव दिया कि परिवारों को कृषि फार्म पर रहकर सेवा करनी चाहिए और वहां ये कृष्ण भावनामृत में आत्मनिर्भर होकर रह सकते हैं। तो इस प्रकार शुरुआत में पापा जी जब थे ऐसी बात नहीं कि अभी तभी से भी ये बहुत बड़े विवादास्पद विषय था कि किनको कैसा रहना चाहिए, किनका स्टेटस कैसा होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का दोष देखते हैं, अभी भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है, उन्हीं का बड़ाई करते हैं और दूसरे का कमी देखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको पसंद नहीं करते, वो बोलते थे सबको अपना अपना जमींदारी उठाना चाहिए, सभी का अपना अपना कर्तव्य है। प्रभुपाद ने कहा हमारा देश का पूरा कार्यक्रम भौतिक जीवन से अनासक्ति पर आधारित है। बोलते हैं केवल हमारा संस्था नहीं, हमारे देश का भी यही आदर्श है भारतवर्ष का, क्या भौतिक जीवन पर आसक्त नहीं होना चाहिए, इसी के ऊपर आधारित है। इसमें जौन संबंध को एकदम बंद कर देना है। गृहस्थ जीवन का एक तरह से उन लोगों को एक रियायत है जो उसे तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं। नहीं तो विवाह की आवश्यकता नहीं है, यह केवल एक भार है। जौन संबंध वैध हो अथवा अवैध अंत में कठिनाई का कारण बनता है। जीबीसी सदस्यों की बैठक हुई, प्रक्रिया यह अपनाई गई थी कि कार्यसूची बनाई जाए, हर प्रकरण पर विचार विनिमय हो और तब मतदान द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए। दिन के अंत में जब लोग श्रील प्रभुपाद के कमरे में उनके पास जाएंगे और दिन भर के प्रस्ताव उनके अनुमोदन या संशोधन के लिए पढ़कर सुनाए जाएंगे। पहले दिन का अधिकांश समय प्रत्येक जीबीसी सदस्य का क्षेत्र और उनके कर्तव्य निर्धारित करने में लगा। इसका विवरण प्रभुपाद को सुनाया गया और उन्होंने उसका अनुमोदन किया। प्रभुपाद ने गृहस्थ और संन्यास जीवन पर भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि सभी भक्तों को कृष्ण के परिवार से संबंधित होना चाहिए। मल मूत्र वाले परिवार का सुकर सुकरी जैसे परिवार से नहीं, संन्यास जीवन का तात्पर्य झूठे परिवार का त्याग है किंतु कृष्ण भावनामृत वाले परिवार का नहीं। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण भावनामृत समाज त्याग पर आधारित है और इसलिए सभी निष्ठावान भक्त उतने ही अच्छे हैं जितने सन्यासी परिधान से वस्तुत कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे वह श्वेत हो अथवा गेरुआ हो। यद्यपि एक आदर्श गृहस्थ को क्रमश आगे बढ़ते हुए औपचारिक सन्यास आश्रम तक पहुंचना चाहिए, उन्होंने कहा है कि उनके सभी शिष्यों को गुरु बनना चाहिए और प्रत्येक को हजारों शिष्य बनाना चाहिए जैसा कि स्वयं उन्होंने किया है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वत्र करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का यही आदर्श था जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की था। चैतन्य महाप्रभु जबकि अपने युवक अवस्था में केवल 24 साल में संन्यास आश्रम ग्रहण किए, गृह त्याग दिए, बहुत बड़े त्याग के आदर्श दिखाए, लेकिन फिर भी जब उन्होंने पुरी में रहते थे तो श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में, हेड पुजारी के रूप में जो गृहस्थ भक्त थे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको इतने सम्मान करते थे कि जब उनके उद्धार के बाद अभी अभी भक्त बनाए, पहले भक्त नहीं थे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकांड मायावादी गुरु थे, उनको अभी महीना दिन भी नहीं हुआ, एक महीना ही नहीं था उनको भक्त बनाए, और एक महीने के बाद महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाना चाह रहे थे तो आपने भक्तों से तो बातचीत करके बातचीत कर लिया, बोले मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अभी अभी जो भक्ति में आए थे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए, जाकर के उनको निवेदन किए कि भट्टाचार्य जी मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूं, आप कृपा करके मुझे अनुमोदन कर दीजिए। क्या? ना, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूं, मुझे आपने परमिशन दीजिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने ये प्रार्थना किए, उसको सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित हो गए, और उन्होंने कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का एक बात, उनके सारे गणों के साथ थे महाप्रभु, आपने बड़े बड़े वैरागी अनुयायियों के साथ थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य अभी अभी बदले थे, उठकर बोलते हैं कि अगर मेरा पुत्र मर जाए, मेरे सर में वज्रपात हो जाए, उसको भी मैं भले सहन कर सकूं, लेकिन आपके विरह में सहन नहीं कर सकता हूं, आप कैसे कहते हैं मुझे छोड़ के जाएंगे, अब भी हाल ही तो मुझे आपने उद्धार किए, मैं इतने कठोर हूं, इतने निष्ठुर हृदय हूं, इतने पतित हूं, ताकि केवल थोड़े दिन में मुझे उद्धार कर कल्याण करने से काम नहीं चलेगा, मेरे पास रह करके मुझे कुछ संग दीजिए तब मेरा कल्याण होगा, ऐसे उद्धार करने से मेरा उद्धार नहीं होगा, ऐसे कह करके रो रो करके मूर्छित होते थे। महाप्रभु के जो बहुत त्यागी वैरागी अनुयायी थे वो भी आश्चर्यचकित होते थे, महाप्रभु आश्चर्य, एक गृहस्थ भक्त हैं, पत्नी परिवार के साथ इतने भगवान के प्रति आसक्त है उनका, इतने समर्पित है, अभी तो कुछ हफ्ता हुआ उन्होंने चेंज हुए भक्ति को स्वीकार किए, इतने आगे, तो महाप्रभु ने उनके बात मान ली, कैंसिल कर दिए प्रोग्राम, जाना कैंसिल कर दिए साउथ इंडिया, अब उन लोग तो माने नहीं थे लेकिन उनकी बात मान ली, मान करके जब फिर कुछ दिन रहे उनके घर में, बाद में फिर जाना चाहे सर, हम बोले ठीक है आप तो ईश्वर हो स्वतंत्र है जो भी चाहे, लेकिन श्री महाप्रभु सन्यासी थे, साक्षात भगवान थे, ईश्वर थे, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके उनके चरण में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, उनसे अनुमोदन प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। चैतन्य चरितामृत में जब इस बात आता है तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य लिखते, देखिए साक्षात परमेश्वर भगवान कृष्ण है, एक सन्यासी है, आश्रम में सबसे बड़े है और सबसे परम पुरुष भगवान है, लेकिन उन्होंने अपने आचरण से सिखाते हैं, अगर एक गृहस्थ भक्त आदर्श भक्त है, एक गृहस्थ भी अगर ऐसे समर्पित भक्त है तो सन्यासी को ही उनके पैर पकड़ करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ये भगवान स्वयं करके दिखाते हैं, तो ऐसा बात नहीं कि उनको एक गृहस्थ है उनको हीन दृष्टि से देखे, नहीं, दृष्टि अमर विचार होना चाहिए किसका कितना भगवान के प्रति समर्पित है, कौन कैसे भक्ति भक्ति करता है, इसी के ऊपर फर्क करना चाहिए हमारा विचार, ना कि आश्रम के अनुसार कि वर्ण के अनुसार, नहीं, ये सब बाहरी वस्तु है। भगवान तो यहां तक कहते हैं ना हम वर्णी न च गृहपति न मनस्तो जतिर्वा, मैं कोई ना वर्ण में हूं ना आश्रम में हूं, मैं तो गोपी भर्तृ पद कमल और दासानुदासान दास, हम आपस में मुठभेड़ लगते हैं, हम बड़े हैं ये बड़े हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ, ये कुछ भी नहीं है, ये सब यूजलेस है, हमारा जीवन के लक्ष्य ना तो सन्यासी बनना है, ना ब्रह्मचारी बनना है, ना गृहस्थ बनना है, ना वानप्रस्थ बनना है, क्या है हमारा लक्ष्य, भगवान का भक्त बनना है, तो वो नहीं हुआ इसके बनकर फायदा क्या है, यूजलेस, तो असली लक्ष्य को भूल जाते हैं उसी चक्र में पढ़ करके, तो असली लक्ष्य को देखना चाहिए, कौन भक्ति में कितने प्रगति किया है, चाहे किसी भी आश्रम में रहे ये पूज्य है, पूजा के योग्य है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं अभी अभी भक्ति में आए सर्वम भट्टाचार्य के चरण में प्रणाम करके उनके आशीर्वाद की भिक्षा करते हैं और दिखाते हैं कि अगर कोई भक्ति में आगे है तो मैं भी उनके चरण में पड़कर प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद क्या करूंगा। ऐसा नहीं, अद्वितीय आचार्य तो तुलसी दल लेके पूजा कर रहे थे, वो दोनों दोनों को पूजा भी करते थे। तो ऐसा नहीं है केवल कोई कपड़ा बदल लिया तो घर त्याग दिया कुछ कर लिया उसलिए बड़े हो गए, नहीं नहीं इसमें कोई बड़पन नहीं। बड़पन तो देखा जाए क्या, देखने का माध्यम है भगवान के प्रति समर्पित कौन कितना, कौन कितने बड़े है ना। चाहे किसी भी अवस्था में क्यों हो, बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कुछ भी अवस्था में हो, भगवान के प्रति उनका समर्पण कितना है, उनके भक्ति के भाव कैसा है, वही माध्यम होना चाहिए, उसी के अनुसार विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि केवल वर्ण और आश्रम के आधार पर होना चाहिए, ये नहीं। तो इसलिए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य शुरू से, संस्था के शुरुआत से इतने विवादास्पद स्थिति को कैसे हैंडल किए उन्होंने, हमेशा जो सन्यासियों ने बल देते नहीं उनको यहां रखना चाहिए, वो यहां नहीं रहना चाहिए, हम यहां रहेंगे, प्रभुपाद बोले ये सब कुछ नहीं चलेगा, जो प्रचार करने के लायक है उनको प्रचार के स्थान दिया जाएगा, तुम बैठ कर क्या मठ में खा के खट में सोंगे, तुझे रहेगा सेंटी सेंटर में, गेट आउट, आप जाके बकवास करो, ही इज डूइंग प्रीचिंग, उसको करना चाहिए। जिन्होंने आचरण के द्वारा प्रचार करते हैं वही श्रेष्ठ है, उन्हीं को सम्मान करना चाहिए, उन्हीं को अनुमोदन करना चाहिए, और केवल आश्रम ग्रहण करके वो करके ये नहीं। चैतन्य महाप्रभु के एक और दृष्टांत है, जब महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन मायापुर में शुरू किए तो उन्होंने एक गृहस्थ भक्त जो जिनका नाम था श्रीवास पंडित, आप जानते हैं उनके घर में कीर्तन आंदोलन, जानते श्रीवास पंडित कौन थे, नारद जी थे ना, नारद मुनि अपने टाइम पे जब नारद जी थे तब उनका प्रीचिंग मिशन क्या था, पकड़ पकड़ करके बैरागी बनाते थे, है ना नहीं, अरे दक्षिण प्रचेता गण को हजारों को 10,000 सेट एक साथ में, इतने बड़े हम तो नहीं कर पाते, एक साथ में 10,000 लड़कियों को फुल सेट, एक भी नहीं भेजे घर में भाई, एक बाकी जगह चले जाओ, नहीं सब को रोमचर्य बना। अब बेचारे हरियाणा फिर एक सेट 1,000 के बच्चा पैदा किए, उनको भी सेकंड सेट पूरा एक भी नहीं बाकी रखे, है ना, ऐसे पकड़ पकड़ करके घर त्यागी कराने वाले, ब्रह्मचारी कराने वाले, त्यागी कराने वाले नारद जी आज सी इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आकर के क्या बने, गृहस्थ बने, है ना, जो इतने बड़े परम वैरागी संत थे, खुद वैरागी थे, दूसरों को वैराग करा रहे थे, आज महाप्रभु के समय के स्थान काल पत्र के हिसाब से स्वयं गृहस्थ बने, लेकिन गृहस्थ बनकर के ऐसा गृहस्थ बने जो गृहस्थ को देख के देखना चाहिए गृहस्थ बनना, वो ऐसे गृहस्थ बने थे, चारों भाई चारों गृहस्थ थे, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, ऑफिस नहीं, व्यापार नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, उनके चिंता तो महाप्रभु को पड़ा था। महाप्रभु जाकर बोले शिवास तुम चारों कुचारों गृहस्थ है, कुछ काम धंधा नहीं करते, और हम सभी अपने घर में आते हैं, सबको खिलाना पिलाना के आपको कुछ काम धंधा नहीं करते, कैसे चलेगा तो घर कैसे चलेगा तेरा। तो शिवास ठाकुर जब पूछे महाप्रभु, बोले क्या कुछ काम धाम करो, बोले मेरे से कुछ काम नहीं, टाइम ही नहीं मेरा बस काम करने, टाइम नहीं क्या करते ना, भजन करता हूं, भजन से पेट थोड़ी भरेगा, काम कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ काम आता ही नहीं, बचपन से किया ही नहीं कुछ काम, कुछ काम आता नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं हो तो क्या करो, अच्छा तो कुछ नहीं तो भीख मांगो, जो कहीं के नहीं है तो उनको तो घर चलाने के लिए भिक्षावृत्ति करना पड़ेगा, तो भीख मांगो, भिखारी बनो, फिर कुछ काम नहीं कर पाएगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो शिवास ठाकुर बोले प्रभु आपको तो पता है भिक्षा करना, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, भिक्षा करने का परमिशन तो ब्राह्मण कर सकते हैं, मैं ना तो ब्राह्मण हूं ना सन्यासी हूं, मैं किसे भीख मांगूंगा, मुझे कौन भीख देंगे डुप्लीकेट। बोले और तू ब्राह्मण नहीं है तो फिर सन्यास ले लो, तो भीख मांगने तो कोई काम नहीं करोगे तो परिवार कैसे चलेगा, तो भीख मांगने के लिए आवश्यकता है ब्राह्मण नहीं है तो सन्यासी ले लो, वैराग्य बनो भाई क्या हो ना, नहीं मैं योग्य नहीं हूं अभी, मैं गृहस्थ हूं मेरा योग्यता नहीं, मैं सन्यासी बन नहीं सकता हूं। अरे तो घर कैसे तरह चलेगा, तो काम नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, भिक्षु नहीं मांगेगा, कुछ नहीं करेगा। तो तीन ताली मार, एक दो तीन, महाप्रभु ये क्या करे ताली मार रहा ना, नहीं मैं तो वही डिसाइड किया ना, क्या डिसाइड किया ना, पहले ताली का अर्थ है मैं पहले दिन पूरा भरोसा करूंगा, सब परिवार मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, मैं सबको बोल दिया भाई हम तो उन्हीं के भजन करते हैं, वो जब खिलाएंगे पिलाएंगे, क्योंकि गीता में उन्होंने कहे हैं जो अनन्य भाव से उनके भजन करते हैं उनका जो क्षमता वो धारण करते हैं, तो उन्हीं के बात के भरोसा करके हम उनके अनन्य भाव से भजन करते हैं, वो अगर नहीं देंगे नहीं खिलाएंगे तो हम बोले फलाहार कर ले, फला फल तो नहीं मिलेगा, बड़ा कष्ट ही है ज्यादा, जलाहार कर लेंगे। बोले ठीक है, आज का ठाकुर जी की बड़ी कृपा, पानी पी के रह जाएंगे गंगा जी के पानी। बोले फिर दूसरे दिन वेट करेंगे, दूसरे दिन शायद आ जाए सप्लाई, दूसरे दिन भी नहीं आया तो दूसरी ताली बजा, उस दिन भी जलाहार कर लेंगे, पूरे परिवार को बोलेंगे चलो और क्या है, भगवान की बड़ी कृपा, डबल एकादशी होता, हम तो केवल सिंगल करते हैं, डबल करते हैं, एकादशी द्वादशी दोनों होंगे। बोले तीसरे दिन, तीसरे दिन भी अब क्या करेंगे, हम तो हमारे दूसरे काम कर नहीं सकते, भजन करेंगे अगर नहीं सप्लाई आया कुछ खाना पीने का, तीसरे दिन भी आप पेट में गीला कपड़ा डालेंगे और पानी तो पियेंगे, इच्छा ही नहीं होगा, तीन दिन तक तो कितना पानी पीकर खाली रहेंगे, गीला कपड़ा डाल करके जैसे जैसे बैठे रहे घर में और क्या करोगे, तो है नहीं कुछ, फिर भी फास्टिंग कर लेंगे। और तीन ताली चौथा नहीं, चौथा दिन को फिर क्यों ताली नहीं, नहीं चौथा दिन को क्या होगा, हम तो सहन कर लेंगे लेकिन आस पास के पड़ो के गांव के लोग बोलेंगे देखो देखो नीलठे को भगवान के भरोसा पर रहते थे, मरेंगे अभी, मर रहे तीन दिन तक नहीं खाए आज तो मरेंगे, तो इसलिए आपको बदनाम करेंगे, हम तो बदनाम पहले से ही, आपको बदनाम करेंगे, देखो जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं वो मरते हैं, इसे काम दाम नहीं करते हैं, केवल हरि भजन करेंगे, मरेंगे देखो ये जिसे कर, तो आपको लोग बदनाम करेंगे हमारे चलते, हमारे इस दशा को देख करके गांव के लोग देख आपको बदनाम करेंगे, देखो उनके पार्टी के लोग कैसे मर रहे हैं, तो आपके बदनाम हम सुन नहीं सकते हैं, इसलिए तीन दिन तक ट्रायल लेंगे, चौथा दिन जब गांव लोग बदनाम करेंगे तो क्या करूंगा, फिर चौथा दिन ना ये पत्थर रखा देखते ना बड़े बड़े पत्थर, ये पत्थर को ला करके गले में बांधूंगा, बांध कर गंगा में कूद जाऊंगा, पत्थर में बांध कर गला में कूदूंगा, इसे क्यों कूद जाऊंगा ना, यही से कूद जाने से मैं तो छिप कर कूद जाऊंगा, तो मर जाने के बाद मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन वो लाश पर ऊपर आएगा, लोग बोलेंगे देखो ये सुसाइड किया, खाना नहीं मिला, भूखे में भगवान की भक्ति कर रहा था, सुसाइड किया, देखो तो फिर भी आपको बदनाम होगा, तो इसलिए आपको बदनाम से बचाने के लिए मैं छिप करके नदी में कूद जाऊंगा गंगा में, और गले में बड़े पत्थर बांध के रहूंगा ताकि लाश बनने के बाद ऊपर भी ना उठूं, ताकि पता भी ना चले मैं मरा के क्या, तो लोग आपको क्रिटिसाइज ना कर पावे, तीन दिन फास्टिंग करने के बाद भगवान को बदनाम ना हो इसी चिंता से मैं जीवन गवा दूंगा, लेकिन फिर भी भगवान को बदनाम ना हो, इसको सुन करके महाप्रभु तो रो पड़े, बोले क्या सिवा ऐसा ना, हाँ ऐसा ही, मैं अकेला नहीं हमारे सारे परिवार का ही। तो भगवान ने रो रो कर सिवास को आलिंगन कर लिए, बोले भले ऐसे सिचुएशन आवे कि लक्ष्मी को भी, भाग्य की सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को भी भीख मांगना पड़े, लेकिन तेरे सप्लाई का कभी कमी नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं, लक्ष्मी की स्पेशल ऑर्डर में दूंगा, तेरे सप्लाई की व्यवस्था करे, अगर जरूरत पड़े भीख मांग कर ला के देना पड़े, फिर भी आपका घर में कमी नहीं होगा, सिवास ऐसे भगवान ने दावा करके दायित्व लिए थे। तो इस प्रकार इतने वैरागी, इतने त्यागी भगवान के प्रति समर्पित गृहस्थ कोई सन्यासी सोच भी सकता नहीं, तो इसलिए ये पूज्य है, चाहे बड़े त्यागी बने, चाहे गृहस्थ बने, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, अगर भगवान के प्रति अनुरक्त है, आसक्त है, तो वही वही हमारे बड़पन है, वही हमारे गुण है, तो इसी के आधार पर श्रेष्ठता का निर्णय होना चाहिए, ना कि कोई कपड़े के आधार पर, कि ढक्कन के आधार पर, नहीं, किसका पास कितने भगवान के प्रति अनुरक्ति है, भक्ति है, समर्पित है, इसी के आधार पर होना चाहिए। तो ही हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य ने शुरुआत से यही शिक्षा मार्गदर्शन दिए हैं, तो हम लोग भी उसी को स्वीकार करना चाहिए। इसी मामले में कोई विवाद नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को हम सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो किसी के आधार पर, केवल भक्ति के आधार पर, भगवान के प्रति समर्पित कितना है, कृष्ण कितने बड़ी कृष्ण तत्व ज्ञान उसके पास है, इसी के आधार पर होना चाहिए, ना कि उम्र के हिसाब से, ना कि ड्रेस के हिसाब से, ना कि धन के हिसाब से, ना कि आश्रम के हिसाब से, है ना। तो अगर इसी प्रकार केवल कृष्ण भक्ति को ही माध्यम बनाकर उसी के ऊपर विचार करें, उसी के ऊपर व्यवहार करें, तो ही हमारे आदर्श, वही हमारे जीवन का सफलता होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? आज मोहिनी एकादशी है, पता नहीं आज ही भगवान ने मोहिनी रूप धारण किए थे कि नहीं, लेकिन कई जगह में तो मोहिनी रूप लेते हैं भगवान ने। भगवान ने ऐसे ही उनका रूप, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, है ना, नहीं करोड़ों कंदर्प की मात करने वाला उनका सुंदर रूप है, लेकिन भगवान ऐसे साधारण से देखा जाए स्त्रियां ज्यादा सुंदर होते हैं, रूप गुण में आकर्षित करने वाले होते हैं। और भगवान जो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा स्वभावान है, वो अगर स्त्री बन गए तो भगवान बने भी थे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, एक अवतार उनका है। किस लिए बने थे वो? हाँ, झगड़ा मिटाने के लिए। देखिए, बहुत भारी कढ़ा सृष्टि हो जाए, बहुत बड़े केस, किसी कीमत से वो केस फैसला नहीं हो पावे, तो एसी में फैसला हो जाए। तो इसलिए स्त्रियों को ऐसी दृष्टि नहीं देखा, भगवान भी स्त्री के रूप के आश्रय लिए इस झगड़ा को मिटाने के लिए, नहीं तो बन नहीं पा रहा था। देवता लोग तो लोग के मारे बस पड़े थे, झगड़ा को खींच लिए थे उनसे, धनंदर के हाथ से अमृत कलश को खींच करके असुरों ने ले गए। देवता लोग ने इतने साल बेगारी काम करते करते रो के मरे हुए काम क्या करें। तो भगवान ने इस समाधान को समाधान करने के लिए कोई उपाय ना देखे, तब भगवान ने बहुत सुंदर स्त्री के रूप ग्रहण किए। तो स्त्री की सुंदरता केवल भोग के लिए नहीं है, ये जोग के लिए भी है, है ना। तो भगवान ने इस मोहित सब असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत दिला दिए। तो अगर भगवत भक्तों को अमृत दिलाना भी होता है, तभी मोहिनी मूर्ति ही दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती। श्री मोहिनी भगवान की जय।